नमस्कार भारत, 26 जून मंगलवार, मैं हूं आदर्श राठौर। अवैध प्रवासियों को लेकर अमेरिका ने जीरो टॉलरेंस नीति में दी ढील। बच्चों के साथ आने वाले प्रवासियों पर नहीं चलेगा आपराधिक मुकदमा। 5 युवतियों के साथ कथित गैंगरेप की घटना को लेकर झारखंड महिला आयोग की अध्यक्ष ने दिया विवादित बयान।
ताली दोनों हाथ से बजती है, अच्छे काम के लिए अगर आप जा रहे हो तो कम से कम एक बार आपका फर्ज बनता था कि थोड़ा सा प्रशासन को सूचना दे देते।
राजस्थान में बीजेपी के 6 बार के विधायक और आरएसएस से जुड़े रहे वरिष्ठ नेता घनश्याम तिवारी ने देश में अघोषित आपातकाल जैसे हालात बताकर दिया इस्तीफा।
मैं जब इमरजेंसी में लड़ सकता हूँ 27 साल की उम्र में, तो अब इस उम्र में मैं लोकतंत्र की रक्षा के लिए क्यों नहीं लड़ूंगा।
होगी अखबारों की समीक्षा भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार नवीन नेगी से। अमेरिका के रक्षा मंत्री जिम मैटिस ने इस बात की पुष्टि की है कि अमेरिका टेक्सास राज्य के 2 सैन्य अड्डों का इस्तेमाल देश में रह रहे अवैध प्रवासियों के लिए अस्थायी कैंप के रूप में करेगा। यह फैसला ट्रंप प्रशासन के उस फैसले के बाद लिया गया है जिसमें मैक्सिको की बॉर्डर से अमेरिका में घुस आए प्रवासियों के बच्चों को उनके परिजनों से अलग न करने का निर्णय लिया गया था। जिम मैटिस ने बताया कि एल पासो में बना फोर्ट ब्लिस सैन्य अड्डा और सैन एंजेलो शहर में बना गुड फेलो एयरफोर्स अड्डे को प्रवासियों के निवास के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मोटर बाइक बनाने वाली अमरीकी कंपनी हार्ले डेविडसन के उस फैसले की आलोचना की है जिसमें कंपनी ने अपना कुछ उत्पादन अमरीका के बाहर ले जाने का निर्णय लिया है। कंपनी का कहना है कि वे यूरोपीय बाजार के लिए बाइक निर्माण का काम धीरे धीरे अन्य देशों की तरफ स्थानांतरित करेंगे, जिससे यूरोपीय संघ की ओर से अमेरिका के सामान पर बढ़ाए गए आयात शुल्क का कंपनी के उत्पादों पर अधिक असर ना पड़े। राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्वीट किया कि वे हार्ले डेविडसन के फैसले से हैरान हैं। यूरोपीय संघ की तरफ से बढ़ाए गए आयात शुल्क की वजह से सोमवार को हार्ले डेविडसन के शेयर में 6% की गिरावट दर्ज की गई थी। चीन और यूरोपीय संघ ने एक दूसरे के देशों में मौजूद बाजार में पहुंच को आसान करने और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में उभर रही रक्षात्मक सोच को खत्म करने की बात रखी है। बीजिंग में हुई मुलाकात के बाद यूरोपीय कमीशन के उपाध्यक्ष यकी कैटाइनेन ने कहा कि वे चीन के कुछ उत्पादों पर अमरीका की चिंता की वजह समझते हैं, लेकिन फिर भी इन चिंताओं को बेहतर तरीके से सामने रखा जाना चाहिए था। यकी कैटाइनेन ने कहा,
In our discussions on modernizing WTO, we have to address very clearly.
विश्व व्यापार संगठन WTO को आधुनिक करने पर हुई हमारी चर्चा में हमने इंडस्ट्री के लिए सरकारी सब्सिडी पर बात की, जो आज के समय एक समस्या है और आने वाले वक्त में निवेश पर असर डालेगी। तकनीक का सही तरीके से हस्तांतरण एक अहम मुद्दा है। अमेरिका ने जो फैसले लिए हैं उसके अपने कारण हैं, लेकिन हमें ये तमाम समस्याएँ बेहतर ढंग से सुलझानी चाहिए। ये थे यूरोपियन कमीशन के उपाध्यक्ष के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। इटली के गृह मंत्री मैटियो सेल्विनी ने ट्रिपोली में लीबियाई सरकार के साथ बातचीत के बाद सुझाव दिया है कि प्रवासियों को बसाने के लिए लीबिया के दक्षिणी हिस्से में कुछ केंद्र बनाने की कोशिशें की जानी चाहिए। लीबिया के उप प्रधानमंत्री अहमद मतीक के साथ एक प्रेस वार्ता में सेल्विनी ने कहा कि इस तरह के केंद्र लीबिया को प्रवासियों का अड्डा बनने से बचाएंगे। वहीं लीबिया के उप प्रधानमंत्री अहमद मतीक ने इस विचार को पूरी तरह खारिज कर दिया कि वे प्रवासियों को अपने देश के भीतर बसाएंगे। अहमद मतीक ने कहा, अवैध प्रवासियों से जुड़े मुद्दे पर हम यूरोपीय देशों के कई बिंदुओं पर सहमत हुए हैं, लेकिन प्रवासियों को लीबिया के भीतर बसाने की योजना को हम पूरी तरह से खारिज करते हैं, क्योंकि यह लीबिया के कानून के खिलाफ है। ये थे लीबिया के उप प्रधानमंत्री अहमद मतीक के शब्द। अर्जेंटीना में चल रही ट्रेड यूनियन की हड़ताल का असर अब पूरे देश पर पड़ने लगा है। इस हड़ताल की वजह से लाखों लोग अपने काम पर नहीं जा पा रहे हैं। राजधानी ब्यूनोस एरेस में ट्रेन, बस और अंडरग्राउंड यातायात सिस्टम ठप पड़ गया है। दरअसल इस हड़ताल की वजह अर्जेंटीना के राष्ट्रपति की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से लिया गया $50 बिलियन का कर्ज है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि पहले से ही गरीबी की हालत में चल रहे उनके देश पर इससे अधिक दबाव पड़ेगा। इसके साथ ही प्रदर्शनकारी 30% तक वेतन वृद्धि की मांग भी कर रहे हैं। यूरोपीय संघ में तुर्की के चुनावी नतीजों की आलोचना की है जिसमें राष्ट्रपति रेचेप तैयप अर्दुआन दोबारा जीतकर सत्ता में वापस आए थे। यूरोपीय पर्यवेक्षक की एक रिपोर्ट में बताया है कि तुर्की के चुनाव में मीडिया ने एक तरफा कवरेज की और आपातकाल की वजह से स्वतंत्रता को भी सीमित किया गया। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत में स्वागत है आपका। इस कार्यक्रम को आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और फेसबुक पर भी लाइव सुन रहे हैं। मैं हूं आदर्श राठौर। कार्यक्रम की शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय समाचार से। अमेरिका ने अवैध प्रवासियों को लेकर अपनी जीरो टॉलरेंस नीति में ढील दी है। बच्चों के साथ अवैध रूप से अमेरिका की सीमा में दाखिल होने वाले प्रवासियों पर फिलहाल आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। इसके कारण अमेरिका में कुछ चिंताएं भी जताई जा रही हैं। इस बीच अमेरिकी रक्षा मंत्री जेम्स मैटिस ने कहा है कि 2 सैन्य अड्डों पर प्रवासियों को ठहराने की व्यवस्था की जाएगी। क्या है ये मामला, इस बारे में ज्यादा जानकारी दे रही हैं गुरप्रीत सैनी।
कुछ दिन पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपने देश में आने वाले अवैध प्रवासियों को उनके बच्चों से अलग करने के चलते दुनिया भर में काफी आलोचना झेलनी पड़ी थी। इसके बाद उन्होंने अपनी इस विवादित प्रवासी नीति को बदलने का फैसला लिया और वादा किया कि अब प्रवासी परिवार एक साथ रहेंगे। अब अमरीका के रक्षा मंत्री जिम मैटिस ने जानकारी दी है कि टेक्सस के 2 सैन्य अड्डों पर अवैध प्रवासियों को रखने के लिए अस्थायी कैंप बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा,
the two bases, that is confirmed now that those will be the two bases, Goodfellow Air
Force Base. तय हो गया है कि गुडफेलो एयरफोर्स बेस और फोर्ट ब्लिस एयरफोर्स बेस को प्रवासी कैंपों की तरह इस्तेमाल किया जाएगा। हालांकि मैं इस बात की पुष्टि नहीं कर सकता कि इन सैन्य अड्डों का इस्तेमाल किस तरह से किया जाएगा। हिरासत में लिए गए लोगों को रखने के लिए होमलैंड सिक्योरिटी विभाग को जो भी सहयोग चाहिए होगा, हम वो सहयोग उन्हें देंगे। हम हर हफ्ते यहाँ के इंतजामों की समीक्षा करेंगे। ये थे अमेरिका के रक्षा मंत्री जिम मैटिस के शब्द। अमेरिका के प्रवासी कानून के तहत अमेरिका की सीमा में अवैध तरीके से घुसने वालों पर आपराधिक मामला दर्ज कर उन्हें हिरासत में ले लिया जाता है। लेकिन अवैध प्रवासियों के बच्चों को उनके माता पिता से अलग ना करने के राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश के बाद ऐसे प्रवासियों पर आपराधिक मामला दर्ज करने पर अस्थायी रोक लगा दी गई है। इसका मतलब ये हुआ कि बच्चों वाले प्रवासियों को अमरीकी सीमा में घुसने पर कोर्ट का समन थमाकर जाने दिया जाएगा और हिरासत में नहीं लिया जाएगा। इस बीच अमेरिका के अटॉर्नी जनरल जेफ सेशंस ने आशंका जताई है कि इस फैसले के बाद अवैध प्रवासी अधिक संख्या में अपने बच्चों को लेकर अमेरिका में प्रवेश करने की कोशिश करेंगे। वहीं सोमवार को व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव सारा सैंडर्स ने भी कहा कि मेक्सिको से लगने वाली सीमा से आने वाले अवैध प्रवासियों के परिवारों को रखने के लिए अमेरिका के पास जगह नहीं है। रक्षा मंत्री जिम मैटिस ने भी ये नहीं बताया कि सैन्य अड्डों पर बनाए जा रहे प्रवासी कैंपों में अवैध प्रवासियों के परिवारों को रखा जाएगा या नहीं।
गुरप्रीत सैनी बता रही थी कि किस तरह से अब अमेरिका का जो प्रशासन है, ट्रंप प्रशासन, वो प्रवासियों को लेकर ओबामा प्रशासन की जिस तरह की नीति थी उसी नीति पर चलने लगा है। रुख करते हैं भारत का। झारखंड के खूंटी में एक गैर सरकारी संस्था से जुड़ी 5 युवतियों से कथित गैंगरेप के 6 दिन बाद भी स्थिति पूरी तरह साफ नहीं हो सकी है। पुलिस सुरक्षा के नाम पर उन लड़कियों से किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा है और इस कारण उनका पक्ष भी सामने नहीं आ पा रहा। इस बीच झारखंड महिला आयोग की अध्यक्ष के उस बयान की भी आलोचना हो रही है जिसमें उन्होंने कहा है कि ताली एक हाथ से नहीं बजती और उन लड़कियों को प्रशासन को सूचित करके कहीं जाना चाहिए था। ज्यादा जानकारी के लिए सुनिए हमारे सहयोगी रवि प्रकाश की ये रिपोर्ट।
गलती देखिए, ताली दोनों हाथ से बजती है। अच्छे काम के लिए अगर आप जा रहे हो तो कम से कम एक बार आपका फर्ज बनता था कि थोड़ा सा प्रशासन को सूचना दे देते। अब प्रशासन को अगर आप सूचना दे देते हैं कि मैं जागरूकता फैलाने के लिए नुक्कड़ करने जा रही हूँ, तो देखिए प्रशासन का जवाबदेही बन जाता, हर हाल में आगे पीछे स्कॉट लगा रहता है।
यह आवाज झारखंड महिला आयोग की अध्यक्ष कल्याणी सरन की है। वे कह रही हैं कि एक लड़कियों ने कोचांग गाँव जाने से पहले इसकी सूचना पुलिस को दे दी होती तो ऐसी घटना रोकी जा सकती थी। वे इस मामले की जाँच के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग की 2 सदस्यों के साथ खूंटी पहुंची थी। प्रारंभिक जांच के बाद उन्होंने मीडिया से यह बात कही। इस बयान के बाद वे आलोचनाओं के केंद्र में हैं। लोगों ने कहा है कि महिला आयोग को नसीहतें देने की बजाय इसकी निष्पक्ष जांच करनी चाहिए थी। जानी मानी लेखिका और झारखंड महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष महुआ माझी ने कहा कि ऐसा बयान देने से पहले 100 दफा सोचना चाहिए। महुआ माझी ने बीबीसी से कहा,
और अगर वो लड़कियां ऐसे हिम्मत के साथ जाकर वो गांव में काम कर रही हैं, पहले भी करती रही होंगी, कभी कुछ हुआ नहीं होगा, तो निश्चित रूप से अगर इतना भयमुक्त माहौल है तो सरकार कर क्या रही है, रिजाइन कर देना चाहिए। अगर आप एक भयमुक्त वातावरण नहीं दे पा रहे हैं बेटियों को और आप सर्वे और तमाम तरह के आंकड़ों में आप सर्वश्रेष्ठ साबित कर रहे हैं झारखंड को, खाली कागजी बयान से तो नहीं होगा ना, वो धरातल पे दिखना चाहिए।
चर्चित सामाजिक कार्यकर्ता दयामणि बड़ला ने कहा है कि महिला आयोग के अध्यक्ष के बयान से तो लगता है कि मानो लड़कियां ही अपराधी हों। उन्होंने कहा कि हम लोग अपने स्तर से इसकी जांच कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि पीड़ित लड़कियों को न्याय मिले। दयामणि बड़ला ने कहा
कि वो महिला आयोग बोल रही है कि कहीं जाना है तो महिला बता के जाए पुलिस को, ये संभव नहीं है
जी।
वो कैसे संभव हुआ? हम लोग भी तो सामाजिक कर्म करता है, हम लोग दिन रात घूमते रहते हैं, हम लोग इस भरोसे घूमते हैं कि राज्य में शासन व्यवस्था है, प्रशासन है, तो शासन व्यवस्था है, प्रशासनिक व्यवस्था है, वो राज्य के लिए तमाम चीजों को देखती है
जी।
और जितने भी लोग हैं उनका सुरक्षा, उनको सुरक्षा देने का काम राज्य व्यवस्था करती है।
आदिवासी मामलों की लेखिका वंदना टेटे ने सवाल किया कि क्या हम पुरातन व्यवस्था में जी रहे हैं जहां बताए बिना लड़कियों के घर से निकलने की मनाही थी। इस बीच नक्सली संगठन PLFI ने मीडिया को जारी एक बयान में कहा है कि गैंग रेप में उनके लोग शामिल नहीं थे, लिहाजा पुलिस उनके संगठन को बदनाम नहीं करे। पत्थलगड़ी समर्थक आदिवासियों ने भी दावा किया है कि इस वारदात में उनके किसी कार्यकर्ता की संलिप्तता नहीं है। इधर कोचांग गाँव की ग्राम सभा ने ऐलान किया है कि वे अपने स्तर से अपराधियों की खोज कर उन्हें सार्वजनिक तौर पर फांसी देंगे। इन सब के बीच झारखंड पुलिस आज भी उन युवकों को गिरफ्तार नहीं कर पाई जिनकी तस्वीरें जारी कर पुलिस ने गैंगरेप में उनके शामिल होने का दावा किया था। रवि प्रकाश, BBC रांची।
कल देश में आपातकाल लगाए जाने की 43वीं बरसी थी और इसी दिन राजस्थान में BJP के 6 बार के विधायक और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े रहे वरिष्ठ नेता घनश्याम तिवारी ने देश में अघोषित आपातकाल जैसे हालात बताकर इस्तीफा दे दिया। BBC संवाददाता दिलनवाज पाशा ने घनश्याम तिवारी से उनके बागी होने और आपातकाल जैसे हालात बताने की वजह पूछी।
घोषित आपातकाल लगा था 25 जून 1975, उसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को जजों की वरीयता लांग कर अपना जज नियुक्त किया था, प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी थी, विधानसभा लोकसभाओं को पंगु कर दिया था और संविधानिक संस्थाओं की अवमानना हो गई थी। उसके बाद में जब चुनाव हुआ, जनता पार्टी आई, तो ऐसे संवैधानिक प्रावधान कर दिए जिसके कारण से सीधी आपातकाल नहीं लगाया जा सकता, तो उसको फिर कैसे लगाया जाए? तो अघोषित आपातकाल लगाया जाता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज ने फैसला दे दिया सरकार के खिलाफ तो उसकी नियुक्ति नहीं होगी, जैसे अपने सेंसरशिप नहीं लगा सकते तो जो आपके खिलाफ लिखते हैं उनके आपने विज्ञापन बंद कर दिए, उन पर छापे डलवा दिए, उन पर दंडात्मक कार्रवाई की, पार्टी के अंदर आपको कोई सुनने वाला नहीं। पार्टी में जैसे देवकांत बरुआ था, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा कहता था, उसी प्रकार से पार्टी में एक ही नाम हो गया और प्रदेश में उसी प्रकार की स्थिति हो गई कि सारी पार्टी को मुख्यमंत्री की जेब में रख दिया और सारा भ्रष्टाचार और सारी बात समाप्त होकर कोई सुनने वाला नहीं। इसको अघोषित आपातकाल कहते हैं, ये मैंने कहा, इसलिए मैंने इसके खिलाफ इस्तीफा।
घनश्याम तिवारी जी, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि चूंकि राजस्थान में ये चुनावी साल है, कुछ महीनों बाद चुनाव होने वाले हैं और कहीं ना कहीं आप अपने चुनावी फायदे के लिए व्यक्तिगत हितों को ध्यान में रखते हुए आपने ये फैसला लिया है और इसको आप जो है पार्टी के खिलाफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे?
व्यक्तिगत हित तो होता जब इनसे समझौता करता तो मुझे ये गवर्नर बनाने के लिए तैयार थे, मुझे राज्यसभा में भेजने के लिए तैयार थे, मुझे और मेरे बच्चों को टिकट देने के लिए तैयार थे, तो व्यक्तिगत होता तो समझौता होता है, व्यक्तिगत हित में लड़ाई नहीं होती। जब लड़ाई होती है तो वो सिद्धांतों के लिए होती है, इसलिए हम सिद्धांतों की लड़ाई लड़ रहे हैं, राजस्थान की जनता के हित की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि राजस्थान में ये काला कानून लेकर आई, राजस्थान में इसने 2,000 करोड़ की संपत्ति पर आजीवन कब्जा करने का बिल लेकर आई, इनके खिलाफ जब मैं लड़ रहा हूँ शुरू से, तो इसमें व्यक्तिगत स्वार्थ तो कोई आता ही नहीं।
भारतीय जनता पार्टी में अकेले ऐसे हैं जो ये महसूस कर रहे थे या आपको लगता है और भी लोग हैं लेकिन वो बोल नहीं पा रहे?
और भी लोग बहुत हैं और वो लोग भी हमारे साथ आएंगे, पर आज वो बोलने की स्थिति में नहीं। लोगों ने इनके खिलाफ बोला, उनके खिलाफ राजस्थान में भी जो लोग बोले उनके खिलाफ मुकदमे लगा दिए, केस लगा दिए, मेरे खिलाफ और मेरे परिवार के खिलाफ भी इन्होंने मुकदमे लगाने की कोशिश की, ACB में कोशिश की, कोर्टों में कोशिश की, और सारे कामों में ये फेल हो गए, कुछ कर नहीं सके, इसलिए इनसे डरते हैं लोग तानाशाही से, इसलिए नहीं बोल रहे।
तो आप क्यों बोले हैं अब?
तो मुझे डर नहीं है और मुझे राज्य की जनता का भला करना है और राजस्थान को बीमारू राज्यों की श्रेणी से बाहर लाना है, और मैं जब इमरजेंसी में लड़ सकता हूँ 27 साल की उम्र में, तो अब इस उम्र में मैं लोकतंत्र की रक्षा के लिए क्यों नहीं लड़ूंगा, और इसीलिए मैंने 25 जून का दिन तय किया कि उसी दिन मैं गिरफ्तार हुआ था और उसी दिन देश में आपातकाल लगा था, इसलिए मैंने आज का दिन चुनकर इस्तीफा दिया।
आप सुन रहे थे राजस्थान में बीजेपी के 6 बार के विधायक रहे वरिष्ठ नेता घनश्याम तिवारी को। रुख करते हैं बिहार का। एक नाबालिग को जेल भेजने के मामले में बिहार पुलिस के 12 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। इसके साथ ही अगमकुआं थाने को लाइन हाजिर किया गया है। जिस नाबालिग को जेल भेजा गया था उसका कसूर सिर्फ इतना था कि पुलिस वालों को उसने मुफ्त सब्जी देने से इनकार कर दिया था। यह पूरा मामला सुर्खियों में आने के बाद बिहार पुलिस ने अपनी गलती भी मानी है। पूरा ब्यौरा बता रही हैं पटना से सीटू तिवारी।
पुलिस जो है फ्री में सब्जी मांगता था, मेरा बच्चा का यही गलती है, सब्जी फ्री में नहीं दिया। उस समय होली के टाइम में मांगा सब्जी था, इसके वजह से उन्होंने देने से इनकार कर दिया था। उसके बाद पुलिस जो है उसको धमकी दिया था कि तुमको समझा दे।
ये आवाज है एक परेशान पिता की। वो पिता जिसके 14 साल के लाडले को बिहार पुलिस ने बीते 3 माह से जेल में कैद कर रखा है। ये मामला जब स्थानीय मीडिया में उछला तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर जांच टीम का गठन किया गया, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर 12 पुलिसकर्मी को निलंबित कर दिया गया है, जिसमें पटना के अगमकुआं थाने के थानेदार कामाख्या नारायण सिंह और बाईपास थाने के थानेदार राजेंद्र प्रसाद भी शामिल है। पटना जोन के IG नैयर हसनैन खां बताते हैं,
उसको जेल भेजा जाना अनुचित था, गैर कानूनी था। जो जांच में और बातें सामने आई हैं कि प्राथमिकी जो बाईपास थाना में दर्ज की गई उसमें काफी अनियमितताएं पाई गई हैं। आरोप में भी ये बात सिद्ध हो रही है कि लड़का माइनर है, इसलिए मैंने वहां के इंटायर FIR में जो रेडिंग पार्टी गई थी उसको सस्पेंड किया है। 9 लोग उसमें सस्पेंड हुए हैं। थाना अध्यक्ष बाईपास जो जिनके थाने में FIR दर्ज हुई उनको निलंबित किया गया है। अगमकुआं के थाना अध्यक्ष को भी निलंबित किया गया है। पूरे अगमकुआं थाना को लाइन हाजिर करने का भी आदेश हमने दिया है और वहां नया स्टाफ की तैनाती का भी आदेश सीनियर SP को दिया गया है।
इसके अलावा नाबालिग को जेल भेजने के वक्त पटना सिटी के ASP रहे हरिमोहन शुक्ला को निलंबित और विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा भी कर दी गई है। दरअसल 14 साल का सुरेश पटना में सब्जी बेचता है। रोजाना शाम पुलिसकर्मी दूसरे सब्जी दुकानदारों की तरह उससे भी मुफ्त की सब्जी मांगते थे। इसी साल मार्च में जब सुरेश ने सब्जी देने से इनकार कर दिया तो 19 मार्च की शाम अगमकुआं थाने की पुलिस उसे पकड़ ले गई। सुरेश के पिता बताते हैं,
जबरदस्ती गाड़ी में बैठा दिया लिया। उसके बाद उसका बड़ी बहन जो था विरोध करने लगा कि क्यों आप उसको ले जा रहे हैं, कहाँ ले जा रहे हैं, किस लिए ले जा रहे हैं। उसको भी उल्टा सीधा यानी गाली गलौज और शब्द बात का प्रयोग किया पुलिस ने।
परेशान घर वालों को 21 मार्च को ये जानकारी मिलती है कि उनके बेटे को बाइक लूट के आरोप में जेल भेज दिया गया है। गौरतलब है कि आधार कार्ड में सुरेश की उम्र 14 है लेकिन पुलिस ने उसे 18 का बताकर जेल भेज दिया है। मामले की जांच के लिए बनी जांच टीम ने भी माना है कि सुरेश नाबालिग है। IG नैयर हसनैन खां बताते हैं,
मैंने आदेश दिया है कि कोर्ट में तुरंत उसका मेडिकल बोर्ड के लिए भी प्रेयर की जाए और उसको इमीडिएटली रिमांड होम में शिफ्ट किया जाए। बेहतर अब यही हमें लगा है कानूनी दृष्टिकोण से कि इस मैटर को फिर से इंटायरली नए पर्सपेक्टिव में इन्वेस्टिगेट करना होगा और सुपरवाइज करना होगा, और ये भार अभी मैंने SSP पटना को दिया है कि 3 दिनों के अंदर करें और अपनी रिपोर्ट सबमिट।
सुरेश से जुड़े सभी मामलों की रिपोर्ट के आधार पर ही सुरेश की रिहाई का फैसला होगा। दरअसल पुलिस का दावा है कि बाइक लूट के आरोप में गिरफ्तार 2 अन्य आरोपियों ने सुरेश का नाम लिया था। इन सब के बीच बीते 3 माह से भावनाओं के समुद्र में डूबते उतराते घर वालों को अब न्याय की आस बंधी है। पटना के किराए के मकान में रहने वाला ये परिवार सब्जी बेचकर ही अपना पेट पालता है, लेकिन बेटे के जेल जाने के बाद वो काम भी खत्म सा हो गया है। परिवार बेटे को जेल से छुड़ाने की कोशिश में 2 लाख रुपए के कर्जे में डूब गया है। जीवन के इस मोड़ पर खड़े पिता से मैंने पूछा कि बेटे से जब जेल में मुलाकात हुई तो वो क्या कहता है। पिता का जवाब था,
कल ही तो रविवार को हमने आखिरी मुलाकात कल किया है। बच्चा मेरा जो है से पुलिस के पिटाई के इतना हुआ है जिससे मेरा बच्चा जो है दहशत में रहता है और दहशत के जब पुलिस देखता है तो भय उसको व्याप जाता है और कुछ दिमाग में उसको इस तरह को बुझा रहा है कि अब हमारा पुलिस जो है जान मार देगा, इस तरह से उसको भय व्याप होता है।
सीटू तिवारी, BBC पटना।
और अब समय है अखबारों की समीक्षा का। स्टूडियो में मौजूद हैं गुरप्रीत सैनी आज के अखबारों के साथ। क्या कहते हैं अखबार
जी आदर्श? इंडियन एक्सप्रेस अखबार के पहले पन्ने पर छपी एक खबर के मुताबिक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने कहा है कि इस बात में कोई शक नहीं होना चाहिए कि राम मंदिर अयोध्या में ही बनेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये बात सोमवार को अयोध्या में एक संत सम्मेलन को संबोधित करते हुए कही।
बीते कुछ वक्त में ये पहली बार है जब यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर के निर्माण को लेकर इतना जोर देकर कुछ कहा है।
जी।
कहा जा सकता है कि 2019 के आम चुनाव नजदीक है, ऐसे में राम मंदिर का जिन एक बार फिर बोतल से निकल गया है। बढ़ते हैं दूसरी खबरों की तरफ। टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी एक खबर के मुताबिक केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की तुलना हिटलर से की है। इमरजेंसी की 43वीं वर्षगांठ पर एक ब्लॉग में अरुण जेटली ने ये बात लिखी। उन्होंने ये भी लिखा कि हिटलर और इंदिरा गांधी दोनों ही कभी संविधान की परवाह उन्होंने नहीं की।
जी।
कई अखबारों के फ्रंट पेज पर एक खबर दिख रही है, दिल्ली की 6 पॉश कॉलोनियों के पुनर्विकास के लिए हजारों पेड़ काटने की योजना पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। कोर्ट ने ये रोक 4 जुलाई तक लगाई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले पर कड़ा रुख अख्तियार किया। कोर्ट ने सवाल किया कि क्या मौजूदा हालात में दिल्ली इतने पेड़ की कटाई झेल पाएगी।
जी।
इन पेड़ों की कटाई के विरोध में स्थानीय लोग भी कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे थे। पेड़ों से ही जुड़ी एक खबर दैनिक जागरण में भी है। दरअसल छत्तीसगढ़ के अंडी गांव के एक स्कूल ने पर्यावरण को बचाए रखने के लिए एक बेहतरीन उदाहरण पेश किया है। इस स्कूल में दाखिले के लिए पौधा लगाना और 4 साल तक उस पौधे की देखभाल करना अनिवार्य शर्त है। ऐसा करने पर बच्चों को 10 नंबर बोनस में भी दिए जाते हैं।
ये काफी अच्छी पहल है, इसको बाकी स्कूलों में भी आजमाया जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया गुरप्रीत। अब हम आपको बताते हैं मध्य प्रदेश के वाजिद खान के बारे में, जिनका मन बचपन में पढ़ाई के बजाय कला में ज़्यादा लगता था। घर वालों का साथ नहीं मिला तो बहुत कम उम्र में ही वो घर से भाग गए, लेकिन अपनी लगन की बदौलत आज दुनिया भर के मशहूर कलाकारों में उनकी गिनती होती है। हमारी सहयोगी उरूज बानो ने इंदौर में उनके आर्ट स्टूडियो में बात की उनसे। सुनिए ये रिपोर्ट।
गोलियां हिंसा का हथियार हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के मंदसौर के कलाकार वाजिद खान ने अपनी अनूठी कला से इन्हें शांति का संदेश देने का जरिया बना लिया है। गोलियों से बनाई महात्मा गांधी की उनकी कलाकृति ने विश्व प्रसिद्धि हासिल की है। वाजिद कहते हैं,
मैंने हिंसा की सामग्री ली, अहिंसा की मूर्त बनाई और मुझे गांधी जी की वो मौत याद आई जिससे वो शहीद हुए थे, वो भी बंदूक की गोली थी, तो मैंने उसी शेप की वही गोल बंदूक की गोलियां ली जो उस टाइम उनको लगी थी।
लेकिन एक कलाकार बनने का वाजिद खान का सफर आसान नहीं था। उन्हें बचपन में ही अपना घर छोड़ना पड़ा।
तो मैं बचपन में हकलाता था, दिमागी तौर से नॉर्मल था, चीजें समझ नहीं पाता था, इसलिए 5th तक ही पढ़ पाया और घर से इसलिए निकाला गया कि घर वाले सब मारते थे कि मैं पढ़ूं, हमारे ऊपर चीजें थोप दी जाती है बचपन से, तो मैं इसलिए अपना घर छोड़ के भाग गया था। तो मैं बचपन से घर से भागा हुआ, तो मैं रोड पे कपड़े बेचता था पुराने, फुटपाथ पे मैं रहता था, मैं बीच बीच में जाता रहा और मैं कामयाब होने के बाद जब घर पे गया तो सोचा कि अब मेरी बहुत रिस्पेक्ट होगी, बाकी नहीं हुई। मेरी रिस्पेक्ट वो तब लोग करने लगे जब मेरे पास बहुत पैसा आया।
पैसा और शोहरत मिलने के बाद भी वाजिद खान की राह आसान नहीं हुई। कामयाबी मिली तो धर्म उनके रास्ते में आ गया।
मौलाना ने मेरे खिलाफ जब फतवे देना शुरू करे तो मेरे गांव के जो लोग थे वो और मेरे खिलाफ हो गए, मतलब मुझे लगा कि अब ये समाज मुझे एक्सेप्ट करने लगा, तो वो समाज वापस मेरे खिलाफ हो गया क्योंकि मौलाना साहब फतवे देने लग गए कि पेंटिंग बनाना हराम है।
बावजूद इस सब के वाजिद खान आज दुनिया के चर्चित कलाकारों में शुमार है और उनकी कला करोड़ों में बिकती है।
तकरीबन 30-32 रिकॉर्ड मेरे नाम से वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है, मेरी आज आर्ट करोड़ों रुपए में बिकती है। मैं बड़े बड़े कॉलेज में लेक्चर देने जाता हूँ, अभी इस साल ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जा रहा हूँ।
चेन्नई के 8वीं क्लास में पढ़ने वाले आर प्रज्ञानंदा दुनिया के दूसरे सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। प्रज्ञानंदा ने 12 साल 10 महीने और 13 दिन की उम्र में ये उपलब्धि हासिल की है। यूक्रेन के सरगेई करजाकिन सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर हैं जिन्होंने 12 साल 7 महीने की उम्र में ये उपलब्धि हासिल की थी। प्रज्ञानंदा ने इटली में ग्रैंड मास्टर मोरोनी लुका जूनियर को हरा कर ये उपलब्धि हासिल की है। प्रज्ञानंदा के बारे में और जानिए इमरान कुरैशी की इस रिपोर्ट में।
8वीं क्लास में पढ़ने वाले प्रज्ञानंदा दूसरे बच्चों की तरह नहीं है, वो तो स्पष्ट हो गया है उनकी कामयाबी की वजह से, लेकिन दूसरे कारण भी हैं जिसकी वजह से पता चलता है कि वो दूसरे 12 साल की उम्र के बच्चों से अलग हैं, खासकर जिस तरह वो सवालों के जवाब देते हैं। वो इस तरह बात करते हैं जैसे कि वो शतरंज की ही चाल खेल रहे हैं। बीबीसी हिंदी से इटली से बात करते हुए प्रज्ञानंदा ने कहा, हम खेलना शुरू किए थे हमारी बड़ी बहन को खेलते देखकर। हम 3.5 साल के थे जब हम शतरंज खेलना शुरू किया था। पिछले 4 साल से हमें आरबी रमेश शतरंज सिखा रहे हैं। ये थे प्रज्ञानंदा के शब्द। प्रज्ञानंदा हर रोज 4 से 5 घंटे अभ्यास करते हैं उनके कोच आरबी रमेश और दूसरे साथियों के साथ। वो अभी तो बहुत खुश हैं कि उन्होंने कुछ हासिल किया है, हालांकि वो 2013 में ही 8 साल की कम उम्र के दुनिया के चैंपियन बन चुके थे और 2015 में 10 साल से कम उम्र टूर्नामेंट में वर्ल्ड यूथ चेस चैंपियनशिप जीता था। हिंदुस्तानी होने के नाते जाहिर है कि वो भी विश्वनाथन आनंद को अपना हीरो मानते हैं। प्रज्ञानंदा ने कहा, हाँ उन्होंने हमारे स्कूल आए थे और कुछ टिप्स भी दिए थे, अभी हमें पता नहीं हम उनसे क्या सलाह पूछेंगे। ये थे प्रज्ञानंदा के शब्द। विश्वनाथन आनंद ने तो ट्वीट के जरिए प्रज्ञानंदा को मुबारकबादी दी है और क्लब में स्वागत भी कर दिया है। इस कामयाबी का मतलब ये है कि दूसरे 12 साल के बच्चों की तरह बातूनी भी नहीं रहे तो क्या है, वर्ल्ड चैंपियन शायद ही क्यों न बन जाए। इमरान कुरैशी, BBC बेंगलुरु।
रूस में खेला जा रहा फुटबॉल विश्व कप 2018 अब अपने रोमांचक दौर में प्रवेश करने लगा है। सोमवार को देर रात खेले गए 2 मुकाबले नतीजों के लिहाज से तो ड्रॉ रहे, लेकिन इनके परिणाम ने ग्रुप बी नॉकआउट में पहुंचने वाली टीमों की स्थिति साफ कर दी। स्पेन और मोरक्को के बीच खेला गया मुकाबला 2-2 और पुर्तगाल और ईरान के बीच खेला गया मैच 1-1 से ड्रॉ रहा, लेकिन स्पेन और पुर्तगाल नॉकआउट चरण में पहुंच गए हैं। खेल की दुनिया में और क्या हो रहा है जानने के लिए सुनिए खेल समाचार।
खेल समाचारों के साथ मैं हूं सुमिरन प्रीत कौर। शुरुआत करते हैं फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप से। फुटबॉल विश्व कप में मुकाबला होगा ग्रुप सी में ऑस्ट्रेलिया का पेरू के साथ, डेनमार्क का फ्रांस के साथ। वहीं दूसरी तरफ ग्रुप डी में मुकाबला होगा आइसलैंड का क्रोएशिया के साथ और नाइजीरिया का अर्जेंटीना के साथ। जहां तक टेनिस की बात है तो फिलहाल चल रहे हैं विंबलडन क्वालिफायर्स और विंबलडन टूर्नामेंट शुरू होगा 2 जुलाई से। अब बात क्रिकेट की। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय मैचेस की जो श्रृंखला हुई ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच, उसे 5-0 से इंग्लैंड ने अपने नाम किया। अब ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच इकलौता T20 मैच खेला जाएगा एजबेस्टन में। ये मुकाबला होगा कल यानी 27 जून को। जाने से पहले बात हॉकी की। चल रही है चैंपियंस ट्रॉफी और हाल ही में भारत ने अर्जेंटीना को 2-1 से हराया। चैंपियंस ट्रॉफी के लगभग हर मैच को जीतने वाली भारतीय टीम का अब मुकाबला होगा ऑस्ट्रेलिया के साथ, ऑस्ट्रेलिया जो है वर्ल्ड चैंपियन। जून 27 यानी कल ये मुकाबला होगा और इस मुकाबले के बारे में वरिष्ठ खेल पत्रकार वी कुमार स्वामी का कहना है,
ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है विश्व नंबर 1 पायदान पर है और भारतीय टीम में जो है अभी कुछ सालों से युवा खिलाड़ी जो आए हैं उनका जो है जो फाइटिंग स्पिरिट है, जो मुकाबला करने की जो उनमें जो है काबिलियत है बहुत ही बढ़िया दिख रही है और उन सबको ये लगता है कि जो है ओलंपिक उनके लिए जो है एक तो ताकि माइलस्टोन या जो कहते हैं लक्ष्य है। इसलिए वो जो सारी टीमें जो सारे प्लेयर्स जो है वो चाहते हैं कि वो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करके जो है कुछ अच्छा प्रदर्शन दिखाने की कोशिश करें।
तो हॉकी के चैंपियंस ट्रॉफी में मुकाबला होगा भारत का ऑस्ट्रेलिया के साथ कल। खेल समाचारों में फिलहाल इतना ही।
और अब विदा लेने से पहले मुख्य समाचार एक बार फिर नवीन नेगी से।
बीबीसी समाचार। अमेरिका के टेक्सास राज्य में 2 सैन्य अड्डों का इस्तेमाल देश में रह रहे अवैध प्रवासियों के लिए अस्थायी कैंप के रूप में करेगा, इस बात की पुष्टि अमेरिकी रक्षा मंत्री जिम मैटिस ने की है। मोटरबाइक बनाने वाली अमेरिकी कंपनी हार्ले डेविडसन ने अपना कुछ उत्पादन अमेरिका के बाहर ले जाने का फैसला किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हार्ले डेविडसन के इस फैसले की आलोचना की है। चीन और यूरोपीय संघ के बीच एक बैठक में एक दूसरे के देशों में मौजूद बाजार में पहुंच को आसान करने और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में उभर रही रक्षात्मक सोच को खत्म करने की बात पर चर्चा की गई। इटली के गृहमंत्री मैटियो सेल्विनी ने लीबियाई सरकार के साथ बातचीत के बाद सुझाव दिया है कि प्रवासियों को बसाने के लिए लीबिया के दक्षिणी हिस्से में कुछ केंद्र बनाने की कोशिशें की जानी चाहिए। हालांकि लीबिया ने इस प्रवासियों को अपने देश में बसाने से साफ इनकार कर दिया है। अर्जेंटीना में चल रही ट्रेड यूनियन की हड़ताल का असर पूरे देश पर पड़ने लगा है। इस हड़ताल की वजह से ट्रेन, बस और अन्य यातायात के साधन ठप पड़े हुए हैं। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत के इस अंक में इतना ही। कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाला अजीत सारथी ने। फेसबुक पर आप तक ये कार्यक्रम पहुँचाया अभिमन्यु साहा ने। शाम 7:30 बजे दिन भर कार्यक्रम के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक जुड़े रहिए bbchindi.com के साथ। आदर्श राठौर को सभी सहयोगियों के साथ इजाजत दें। नमस्कार।